आचार्य रचित धौला टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री दर्शन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की थी, जो उपदेश हमें भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब छठी पुस्तक हमने प्रारंभ की है और ये पूरी पुस्तक का विषय ही चूली का है। चूली का कहते ही उसको है कि जो पहले हमने आठ अनुयोग द्वारों के द्वारा जीव का स्वरूप देखा है, गुणस्थानों में और मार्गणास्थानों में, उसी की फिर दोबारा कुछ बातें अधिक स्पष्ट करेंगे। विषय तो वही होगा परंतु उसको अधिक स्पष्ट करेंगे। कुछ बातें जो कही थी वही और दृढ़ करने के लिए बताएंगे, और कुछ बातें ऐसी है कि जो जिनकी चर्चा वहाँ नहीं हुई थी उनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। ये जो गुणस्थान मार्गणास्थान आदि जो बातें हैं तो वो कर्मबंध के कारण होती है, कौन से जीव कौन से गुणस्थान में जाता है, वहाँ से कहाँ जाता है आदि आदि बातें, तो इसलिए कर्मबंध की बात यहाँ बताने वाले। तो यहाँ का जो पहला अधिकार है, पहला चैप्टर है, उसमें प्रकृति समुत्कीर्तन उसका नाम है। समुत्कीर्तन यानी समग्र रूप से उसका व्याख्यान करना। तो प्रकृति का अर्थ होता है कर्म, कर्म प्रकृति। तो कर्म प्रकृतियों के बारे में यहाँ सारा व्याख्यान होगा। तो ये कर्म प्रकृतियाँ, तो ये जो मेन जिसको कहते हैं मूल प्रकृतियाँ, वे हमने आठ देखी थी, और हरेक के उसके जो उत्तर प्रकृतियाँ जिसको कहते हैं उनके भेद कहो या प्रभेद कहो या पेटाभेद कहो, तो जिसको सब डिविजन्स कहेंगे, तो उसके भेद उसको कहते हैं उत्तर प्रकृतियाँ। तो यहाँ उन दोनों की चर्चा होने वाली है। अब यहाँ हम पृष्ठ संख्या 7 पर आए हैं। वहाँ हमने पहले ही देखा था कि मूल प्रकृतियों का वर्णन करते हुए ज्ञानावरण नाम की कर्म प्रकृति है, ऐसा एक सूत्र आया। तो उस संबंध में शंका समाधान यहाँ चल रहे। शंकाकार ने पूछा कि ज्ञान का आवरण करने वाला हो ऐसा न कहकर ज्ञान का नाश करने वाला ऐसा क्यों नहीं कहते, ज्ञान विनाशक क्यों नहीं कहा। तो वहाँ उसको उत्तर दिया कि ज्ञान दर्शन ये तो जीव के लक्षण है, उनका कभी भी विनाश हो ही नहीं सकता। कम से कम इतना तो ज्ञान तो हर एक जीव में होगा ही, जिसको जघन्य ज्ञान कहेंगे। तो जघन्य ज्ञान का नाम है पर्याय ज्ञान। उसी पर्याय नाम के जो ज्ञान है, पर्याय नाम के ज्ञान की पर्याय हो तो वो पर्याय कहो या अक्षर का अनंत वा भाग कहो, एक ही बात है। तो इतना ज्ञान निगोद जीवों में, जो सूक्ष्म निगोद लब्धि पर्याप्त जीव, उनमें ऐसा इतना कम से कम इतना तो ज्ञान पाया ही जाता है, इससे भी रहित ऐसा कोई जीव नहीं होगा। तो मिनिमम इतनी ज्ञान का उघाड़ इतना तो होगा ही होगा। ज्ञान के उघाड़ से रहित कोई भी जीव कभी भी नहीं हो सकता, ये बात कल हमने देखी थी। अब यहाँ हम 7 नंबर के पृष्ठ पर अगली शंका पढ़ने जा रहे हैं। समाधान के बाद जो शंका लिखा है वहां से हम पढ़ेंगे। यदि सर्व जीवों के ज्ञान का अस्तित्व सिद्ध है, ये जो अभी बात उसने सुनी कि सभी जीवों में ज्ञान तो प्रकट है ही है, तो यदि ऐसा अस्तित्व सिद्ध है यानी वो तो है, तो फिर सर्व अवयवों के साथ ज्ञान का उपलम्ब होना चाहिए, अर्थात ज्ञान के सभी भागों का या पूर्ण ज्ञान का सद्भाव पाया जाना चाहिए, यानी ज्ञान जो है उसके संपूर्ण अवयवों के साथ विद्यमान होना चाहिए, यानी उसके जो पूरे अंश जो है, यानी केवल ज्ञान जो उसकी सामर्थ्य है वो पूरा का पूरा वहाँ प्रकट होना चाहिए, ऐसे उसका कहना है। उसका समाधान करते हैं, यह कहना उपयुक्त नहीं है क्योंकि आवरण किए गए ज्ञान के भागों का उपलम्ब होने में विरोध आता है। जितने ज्ञान का आवरण हो चुका है तो उसका पर्याय में वो उपलम्ब नहीं है, यानी वो उपलब्ध नहीं है, प्रकट नहीं है। फिर शंका, शंकाकार पूछता है कि आवरण युक्त जीव में, आवरण युक्त जीव है ने भी कहां तक है आवरण युक्त जीव मालूम है? ज्ञान आवरण के संबंध में आवरण युक्त जीव कौन से गुणस्थान तक है? 12वें गुणस्थान तक आवरण युक्त जीव है। तो उसके कारण उनका कुछ नाम आपको मालूम है? उनको क्या कहते हैं? छद्मस्थ। छद्मस्थ कहते, छद्म यानी आवरण, उस आवरण सहित वाले ऐसे जो उनको कहते छद्मस्थ, और जिनके आवरण नहीं है वो सर्वज्ञ। तो ये आवरण युक्त जीव में आवरण किए गए ज्ञान के भाग क्या है अथवा नहीं है? प्रश्नकार का प्रश्न ऐसा है कि जिस जीव में ये ज्ञानावरण पाया जाता है तो उसके आवरण जो किया है ज्ञान के, जिस ज्ञान के ऊपर आवरण है तो उसके भाग जो है वो है या नहीं है? अभी दोनों ओर से वो यानी आचार्यों को पकड़ना चाहता है। यदि है तो वे आवृत नहीं कहे जा सकते। यदि आप कहेंगे कि वह ज्ञान है, अभी जैसे केवल ज्ञानावरण है, तो प्रश्नकार का प्रश्न है ये जो केवल ज्ञान है जो आवृत है ना, वहां पर वो ज्ञान का भाग आवृत है, तो क्या वह ज्ञान है कि नहीं है? आप यदि कहते केवल ज्ञान है, आवृत वाला भाग है, तो ऐसा नहीं कह जा सकते, क्योंकि संपूर्ण रूप से विद्यमान भागों के आवरण मानने में विरोध आता है। यदि आप कहेंगे कि केवल ज्ञान है तो वहां आवरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप कह रहे हो कि केवल ज्ञान है, तो उसका आवरण करने वाला कर्म वहां नहीं हो सकता, यानी उनको आवरण नहीं हो सकता। अब यदि नहीं है और आप कहते हैं केवल ज्ञान नहीं है, तो कहेंगे तो उनका आवरण नहीं माना जा सकता, क्योंकि आवरियमाण अर्थात आवरण किए जाने योग्य ज्ञान के अभाव में आवरण के अस्तित्व का विरोध है। दोनों ओर से वो शंका पूछना चाहते। यदि आप कहते वहां केवल ज्ञान है तो है तो उसका आवरण नहीं है सिद्ध हुआ। अगर आप कहते कि केवल ज्ञान है नहीं है, उनका आवरण नहीं माना जा सकता। यदि नहीं है, केवल ज्ञान है ही नहीं है, तो जो है ही नहीं उसका आवरण क्या होगा? ये दोनों ओर से प्रश्न पूछना चाहता है। प्रश्न ख्याल में है ना? हाँ, अब उसका उत्तर समाधान। यहाँ आशंका का परिहार करते हैं, यानी उसका समाधान करते, उसको रूल आउट करते। द्रव्यार्थिक नय के अवलंबन करने पर आवरण किए गए ज्ञान के अंश सावरण जीव में भी होते हैं। सावरण जीव यानी जिसको आवरण है वह स आवरण, आवरण सहित जीव, उसको सावरण जीव कहा, जिसको हमने अभी छद्मस्थ कहा था। क्या कहते हैं? यदि हम द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करेंगे, सामान्य से वहां देखेंगे, तो द्रव्यार्थिक नय के अवलंबन से हम कहेंगे केवल ज्ञान स्वरूप ही जीव है। वहां तो है ज्ञान, उसका पूरे पूरा है, पूर्ण सामर्थ्य रूप से विद्यमान है जीव। पर्याय में वहां आवरण है, उसको संयोग में आवरण है, फिर भी द्रव्यार्थिक नय की अभी हम अपेक्षा कर रहे हैं। तो द्रव्यार्थिक नय, हम जो कहते हैं ना समय सारादि में द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा, वो तो पूर्ण शुद्ध है, केवल ज्ञान स्वरूप है, मम स्वरूप है सिद्ध समान, ये जो कहते हैं। तो द्रव्यार्थिक नय के अवलंबन करने पर आवरण किए गए ज्ञान के अंश सावरण जीव में भी होते। अभी हम केवल ज्ञान का उदाहरण देख रहे थे, तो द्रव्यार्थिक नय से आवरण किया गया ज्ञान का अंश, यानी जो केवल ज्ञान आवरण, केवल ज्ञान को आवृत करता है, तो ये जो केवल ज्ञान रूप जो अंश है, जो पर्याय है या जो उसकी सामर्थ्य है, वो सावरण जीव में भी होते हैं, यानी अभी छद्मस्थ जीवों को भी हम कहेंगे द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा वो केवल ज्ञान स्वरूप है उसका, पर्याय में प्रकट की बात नहीं है, क्योंकि जीव द्रव्य से पृथकभूत ज्ञान का अभाव है। ज्ञान तो जीव से पृथक है ही नहीं है, ज्ञान आदि अनंत गुणों के समूह को ही तो हम जीव कहेंगे यहाँ, तो उससे तो भिन्न है नहीं है वो कि जीव यहाँ होगा और उसका ज्ञान कहीं अन्य होगा, ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती है। अथवा विद्यमान ज्ञान के अंश से आवरण किए ज्ञान के अंशों का कोई भेद नहीं है। क्या कहते हैं? विद्यमान ज्ञान के अंश से आवरण किए ज्ञान के अंशों का कोई भेद नहीं है। कौन सी? द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। अभी हम देखते हैं विद्यमान ज्ञान का, हमारा कुछ ज्ञान प्रकट है और बाकी ज्ञान आवृत है। अभी शुद्ध ज्ञान की बात करेंगे हम। शुद्ध ज्ञान हमारा थोड़ा प्रकट है, पूर्ण शुद्ध ज्ञान तो प्रकट नहीं है, तो थोड़ा प्रकट है, थोड़ा आवृत है, परंतु द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से तो ये पूर्ण रूप से हमारा जो ज्ञान है तो ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। ख्याल है ना? अब शंकाकार पूछता है, ज्ञान के आवरण किए गए और आवरण नहीं किए गए अंशों की एकता कैसे हो सकती है? अभी जो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा कथन किया, जो ज्ञान आवरण किया हुआ है और जो प्रकट है, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा दोनों को आप एक करके पूर्ण ज्ञान है ऐसा कहते हो, तो ये कैसे हो सकता है? तो उसका समाधान नहीं, क्योंकि राहु और मेघों के द्वारा सूर्यमंडल और चंद्रमंडल के आवृत, देखो पहले इसको देख के फिर हम पेज पलटेंगे। ये जो इक्लिप्स होता है ना, ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो उसमें क्या होता है, वो राहु और केतु जो ग्रह है वो बीच में आते हैं तो वो ग्रहण दिखता है, तो वहां कहते हैं कि सूर्य को आवृत कर दिया, वहां तो कहते हैं वो निगल गया राहु, ऐसे कहने की पद्धति है। या अभी बरसात के दिनों में हम देखते हैं मेघों के द्वारा सूर्य तो प्रकट है पीछे, परंतु वो आवृत किया जाता है, चंद्र हो या सूर्य बिंब हो, मंडल यानी वो सूर्य और उसके अन्य, उसके सूर्यमंडल यानी अन्य ग्रह वगैरह, या चंद्रमंडल यानी उसके साथ नक्षत्र वगैरह ले सकते हैं। तो राहु और मेघों के द्वारा सूर्यमंडल और चंद्रमंडल के आवृत और अनावृत भागों के एकता पाई जाती है। जैसे अभी हमने सूर्य ग्रहण देखा, तो उसमें कुछ भाग तो प्रकट है, पूरा खग्रास नहीं था, खंडग्रास था, खंडग्रास यानी पार्शल था, तो उसमें थोड़ा सूर्य तो प्रकट है और बाकी ढका हुआ है, फिर भी सूर्य तो पूरा एक है, वैसे वो दृष्टांत हुआ। वैसे यहाँ ज्ञान का कुछ अंश आवृत है और कुछ प्रकट है, फिर भी द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा देखेंगे तो ज्ञान तो पूरा एक है और पूर्ण सामर्थ्य वाला है, ये तो द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा हो गई, क्योंकि उसने पूछा था ना कि क्या वो अंश प्रकट है कि नहीं है, तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा है वहां। इस प्रकार उक्त व्यवस्था के होने पर, यानी ऐसी वहां पोजीशन होने के कारण, आवरियमाण, आवरियमाण यानी जिसको आवृत किया जाता है उसको कहेंगे आवरियमाण, यानी जिसको ढका है, ढकने योग्य है या जो ढका हुआ है, आवरियमाण यानी हम इसको आवरण कर दिया, अभी ये पूरा दिख रहा है आपको, इसको ढक दिया, तो किसको ढका है, इस क्लिप को हमने ढक दिया, ये आवरियमाण हो गया, ये जो ज्ञान ढक गया है उसको आवरियमाण कहेंगे। और आवारक, ढकने वाला, वो आवारक, क लगा ना, वो करने वाला हो जाता है, क्या करने वाला, आवरण करने वाला कौन होगा यहाँ, कर्म। अभी यहाँ तो ज्ञानावरण की बात चल रही है, आवरण वाले दो ही कर्म है, ज्ञान के आवरण वाले ज्ञानावरणीय और दर्शन के आवरण वाले दर्शनावरणीय। देखो यहाँ ज्ञान का स्वभाव विभाव कौन से देख रहे हैं? ज्ञान का कौन सी विभाव पर्याय देख रहे हैं आप? हम यहाँ अभी हम राग द्वेष की बात नहीं कर रहे हैं, अल्प ज्ञान है या पूर्ण ज्ञान है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, देखो यहाँ जो आप मिथ्या ज्ञान कहते हो वहाँ उसमें अपेक्षा आती है, मिथ्यात्व वाले का अज्ञान सहित वाला ज्ञान, मिथ्यात्व जो है मिथ्यात्व सहित वाला ज्ञान है उसको मिथ्या ज्ञान कहा। हाँ, प्रकट ज्ञान, अप्रकट की बात कहाँ है उसमें? ये जो मिथ्यापना है उसमें किस में है? प्रकट ज्ञान है उसी में तो है, जो प्रकट है ही नहीं है तो उसमें मिथ्या है या सम्यक है ऐसा सवाल ही नहीं होता।
देखो ज्ञान में विकारी और अविकारी ऐसा होता ही नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान है लेकिन उस ज्ञान को मिथ्या श्रद्धा के कारण, मिथ्यात्व के सहित होने का कारण है इसलिए उसको मिथ्या ज्ञान कहेंगे और उसको आप समझ रहे हैं कि वो विकारी ज्ञान है। हाँ, वो विकारी ज्ञान नहीं है, उसको हम आरोपित कह रहे हैं कि भाई वो विकारी है। एक्चुअली तो मिथ्या ज्ञान तो श्रद्धा की अपेक्षा से उसको मिथ्या किया गया है। देखो अभी ये आपको बात समझाने के लिए थोड़ा सा लंबाए रहा हूं कि कोई जीव पहले तो जानेगा कि मैं कैसा हूं, जानेगा यानी जिनेंद्र भगवान ने जैसा आत्मा बताया है वैसा मैंने जाना है, जाना है बिल्कुल जैसा कि जैसा वो है, फिर भी उसको मिथ्या ज्ञान कहेंगे। लेकिन जब मेरी श्रद्धा कहेगी कि नहीं बिल्कुल मैं ऐसा ही हूँ और वो मानेगी तो वही जो ज्ञान पहले मिथ्या ज्ञान कहने में आ रहा था वही चलता रहा और जिस समय सम्यक श्रद्धा हुई उसी समय उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहेंगे। पहले के ज्ञान में और अभी के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है लेकिन श्रद्धा के कारण से उसको मिथ्या ज्ञान कह रहे थे क्योंकि श्रद्धा गलत थी इसलिए उसको मिथ्या ज्ञान, और उसी अगले समय में जब वो सम्यक हो गई श्रद्धा तो उसी ज्ञान को, उसी यानी वैसे ही ज्ञान को अगले पर्याय में जो आई उसको हम सम्यक ज्ञान कहेंगे। ज्ञान में विकार अविकार नहीं होता है, श्रद्धा में होगा चारित्र में होगा।
देखो अभी हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ ज्ञान को आवर्यमान आवरण होने वाला और कर्मों को आवारक कहते हैं, आवरण करने वाला, एक आवृत होने वाला और एक आवरण करने वाला। एक तो जीव यानी यहाँ तो अकेले ज्ञान की बात है क्योंकि ज्ञानावरण की हम चर्चा कर रहे हैं, उस संबंध में चर्चा हो रही है। तो क्या कहते हैं, आवर्यमान और आवारक भाव बन जाता है, अर्थात ज्ञान तो आवरण करने योग्य और कर्म पुद्गल आवरण करने वाले सिद्ध हो जाते हैं। यदि उक्त व्यवस्था न मानी जाएगी तो, यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे कि तो ज्ञान तो जिसको आवरण करने वाला वो ज्ञान है और जो आवरण करने वाला है वो कर्म है, ऐसा यदि नहीं मानेंगे तो उसके अनुपलम्ब का प्रसंग प्राप्त होगा यानी वो उपलब्ध नहीं होगा। अनुपलम्ब है ना, यदि ऐसी व्यवस्था नहीं मानेंगे तो वो सिद्ध नहीं होगा, प्रूफ नहीं होगा, उसकी उपलब्धि नहीं होगी। किंतु अब ये तो अभी तक तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा बता दिया, अब पर्यायार्थिक नय की, पर्याय में प्रकट की बात अगर हम देखते हैं तो पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करने पर पर्यायार्थिक नय यानी जिसमें विशेष का लक्ष्य होता है, जो ज्ञान विशेषों को पर्यायों को देखते हैं उस ज्ञान के द्वारा देखने पर, पर्यायार्थिक नय के द्वारा देखने पर या कथन करने पर आवर्यमान ज्ञान भाग सावरण जीव में नहीं होते। अभी हम मति ज्ञान की या श्रुत ज्ञान की बात करेंगे और हम निगोद जीव का उदाहरण देखते हैं। निगोद जीव में पर्याय नाम का जो मिनिमम ज्ञान प्रकट है और बाकी सारा वो ज्ञान जो है अधिक कैपेसिटी वाला वो आवृत है, और पर्याय नाम का जो अक्षर का अनंत भाग ज्ञान है वो प्रकट है, बराबर। तो पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा हम निगोद जीव की ओर देखते हैं तो उसका प्रकट भाग कितना है, वो पर्याय नाम का ज्ञान वो प्रकट है। अभी हम अक्षर ज्ञान, पद ज्ञान, आगे जो जो सारे आगे के ज्ञान है वो आवृत है। तो पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा आवृत ज्ञान वहाँ है ही नहीं है। यानी पर्याय में वो अक्षर नाम का ज्ञान नहीं है, पद नाम का ज्ञान नहीं है, संघात नाम का ज्ञान नहीं है, आगे के सारे यानी मान लेते हैं उसके ज्ञान की कुछ 10 डिग्री वहाँ प्रकट है, 100 में से 10 डिग्री प्रकट है ऐसा मान लेते हैं, तो बाकी 90 डिग्री उसकी अप्रकट है तो वो है ही नहीं कहेंगे पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा। द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा हमने देखा था वहाँ तो सारा 100% ज्ञान है। पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा जितना आवृत नहीं है उस उतना प्रकट है और उतना ही वहाँ है कहेंगे, बाकी है ही नहीं कहेंगे। यानी उस जीव को 10% ही ज्ञान है, 90% वहाँ ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान का उतना भाग है ही नहीं ऐसा कहेंगे। देखो यहाँ फिर पढ़ेंगे, देखो चौथी लाइन उसमें, पर्यायार्थिक नहीं का अवलंबन करने पर आवरियमान ज्ञान भाग, ज्ञान भाग यानी अभी जो हमने अवरियमान कितना देखा हमने 90% देखा था, सावरण जीव में नहीं होते हैं। यानी अभी जो हमने देखा 90% भाग है ही नहीं उसमें, निगोद की बात करें ना, हमने मान लिया है ये 10 और 90 ऐसा नहीं होता, वो तो निगोद जीव के भी जो ज्ञान है उसमें भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, तो हमारे ज्ञान में कितने होंगे।
वास्तव में पर्याय ज्ञान जो है और जो अक्षर ज्ञान है इन दोनों में अनंत मतलब भेद
बीच
है।
में बहुत सारे बढ़ते हुए ज्ञान के बहुत सारे अलग अलग स्थान
हैं, जिसको हम पर्याय समास कहते हैं। यानी मान लीजिए कि पर्याय ज्ञान है वो एक आंकड़ा लेना और जो अक्षर है वह 10 लाख लेना, तो 2 नंबर से लेके 10 लाख के कम एक यहाँ तक के जितने भेद होंगे वो पर्याय समास। अब यहाँ कहेंगे कि पर्याय समास के एक पर्याय में, पर्याय ज्ञान के एक पर्याय में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, जो मिनिमम मोस्ट जघन्य ज्ञान है उसमें, अभी उसमें एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ते गया तो ऐसे अनंत अविभाग प्रतिच्छेद मतलब बढ़ते जाते हैं, तब अनंत अनंत अभी उसका तो गणित बहुत लंबा है, तब पर अक्षर ज्ञान होता है और केवल ज्ञान के अनंत विभाग प्रतिशत कितने होंगे उसका कोई माप नहीं है, कंपैरिजन नहीं है, मैक्सिमम मोस्ट।
देखो ये क्या कहे, पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करने पर आवरियमान ज्ञान भाग सावरण जीव में नहीं होते हैं। अभी हमने जो उदाहरण देखा था वो 90% उसमें है ही नहीं है, क्योंकि पर्याय की तरफ से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वे ज्ञान भाग उक्त जीव में नहीं पाए जाते। ये 90% वहाँ है ही नहीं है, 10% ही वहाँ है, बराबर पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा। दूसरी बात यह है कि यह सूत्र जो हमने ऊपर सूत्र देखा था, यह सूत्र पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करके स्थित नहीं है। देखो सूत्र में क्या देखा हमने, वहाँ तो 5वें सूत्र में इतना ही बताया था कि ज्ञानावरणीय कर्म है और वो आवरण करने वाला है, जो आवरण करता है उसको ज्ञानावरण कहा, तो आवरण करता है तो उसके लिए शंकाकार ने शंका उठाई थी, जो है उसको आवरण करता है क्या, जिसको आवरण करता है वो है ही नहीं, तो है ही नहीं उसको आवरण नहीं हो सकता, और जो है उसको आवरण करता है तो आप है भी कहते हैं और आवृत भी कहते हैं, कैसे हो सकता है। तो यहाँ जो आवरण करने वाली बात है वो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा बताई है। देखो पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करके स्थित नहीं है कौन, यह सूत्र ज्ञानावरणीय संबंधी, क्योंकि उसमें आवरियमान और आवारक, अभी देखा ना आवरियमान किसको कहे, कहा हमने ज्ञान को, और आवारक ज्ञानावरणीय कर्म को, इन दोनों के व्यवहार का अभाव है। ये व्यवहार कब होगा, हाँ देखो इस सूत्र में दोनों के व्यवहार का अभाव है, इसलिए यहाँ वो पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करके यह सूत्र नहीं है, किंतु यह सूत्र द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करके अवस्थित है, अवस्थित है ने, ये बताया गया है। इसलिए यहाँ पर आवर्यमान और आवारक भाव विरोध को प्राप्त नहीं होता, यानी यहाँ ज्ञान को आवर्यमान कहा और कर्म को आवारक कहा, वो कहने में कोई विरोध नहीं आता, क्योंकि शंकाकार ने दोनों तरफ से पकड़ना चाहा था शिष्य आचार्य को, ऐसा है तो ये दोष आता है, वैसा है तो वो दोष आता है, परंतु वो नए से अनभिज्ञ होने के कारण उसको ऐसी ऐसी शंका उठती है। फिर शंका, ज्ञान को आवर्यमान किस लिए कहा है, तो उसका समाधान करते, यानी ज्ञान को क्यों कहा गया, आवृत होने वाला है ऐसा ज्ञान को क्यों कहा, तो उसका समाधान करते हैं। अपने विरोधी द्रव्य के सन्निधान अर्थात सामीप्य होने पर भी जो निर्मूलतः विनष्ट नहीं होता उसे आवर्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? विरोधी द्रव्य ने यहाँ ज्ञानावरणीय कर्म और उसका सन्निधान यानी समीपता, सामीप्य लिखा ना, सामीप्य कहो या समीपता यानी नजदीकता, यानी कर्म का भी संबंध है ज्ञानावरण कर्म की नजदीकता होने पर भी जो निर्मूलतः नष्ट नहीं होता, समूल जो नष्ट नहीं होता, पूरा का पूरा नष्ट नहीं होता, उसको कहते हैं आवर्यमान। यानी इसको भी ज्ञानावरण आदि उसका उदाहरण देते हैं ना, अभी कोई मूर्ति और ऊपर पतला ऐसा वस्त्र ढक दिया तो कुछ कुछ तो उसमें से स्पष्ट है, पूरा तो ढक नहीं गया है, फिगर कुछ ना कुछ दिखती है, तो उसको कहते हैं वो ढका हुआ है, नष्ट नहीं हुआ है, ढका हुआ है, आवर्यमान इसीलिए कहते हैं। हम ढका हुआ किसको कहेंगे, जो चीज नष्ट हुई है वहां ढकने का सवाल क्या है, किसको ढकेंगे, तो इसलिए वही चीज को हम ढकी हुई कहते हैं जो अंदर विद्यमान है, जो समूल नष्ट नहीं हुई है, इसलिए ज्ञान को आवर्यमान कहा। और दूसरे अर्थात यानी दूसरी बात, आवरण करने वाले विरोधी द्रव्य को आवारक कहते हैं, चूंकि विरोधी, ये एक शब्द चाहिए, चूंकि विरोधी कर्म द्रव्य के सन्निधान होने पर, सन्निधान होने अभी हमने अर्थ क्या देखा था, समीपता होने पर, विरोधी द्रव्य ने यहाँ ज्ञानावरण की बात चल रही है, यानी ज्ञानावरण द्रव्य के कर्म द्रव्य के सन्निधान समीपता होने पर ज्ञान का निर्मूल विनाश नहीं होता, ज्ञान पूरा का पूरा नष्ट नहीं होता, निर्मूल विनाश यानी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाना, समूल उसका नाश होना, तो ऐसा विनाश उसका नहीं होता, क्योंकि वैसे मानने पर जीव के विनाश का प्रसंग आता है। पहले हमने देखा था ज्ञान और दर्शन तो जीव का लक्षण है, यदि हम लक्षण को पूर्ण रूप से नष्ट हुआ मानेंगे तो वहां जीव ही नहीं रहेगा, लक्षण के अभाव में लक्ष्य का भी अभाव हो जाता है, इसलिए यदि ज्ञान का समूल नाश हो जाए, निर्मूल नाश हो, पूरे पूरा नष्ट हो जाए ज्ञान, तो जीव ही नहीं रहेगा वहां, इसलिए ज्ञान तो आवर्यमान है और कर्म द्रव्य आवारक है ऐसा कहा गया है। ये ख्याल में है, शब्द है ना आवर्यमान, इसका अर्थ ख्याल में आता है, तो ये सब बाकी तो कोई आसान है। अब फिर शंका, जीव द्रव्य से पृथकभूत, पृथकभूत यानी अलग भिन्न, जीव द्रव्य से पृथकभूत पुद्गल द्रव्य के द्वारा जीव का लक्षणभूत ज्ञान कैसे विनष्ट किया जाता है। ये जो आवरण करने वाली बात है, पर्याय में तो विनष्ट होता है कि नहीं, ऐसे कहते पर्याय में तो है ही नहीं वहां, तो जीव तो भिन्न है, पुद्गल द्रव्य भिन्न है, जीव तो चेतन है, वो तो जड़ है, तो जड़ द्रव्य जीव के ज्ञान गुण को कैसे घात करता है, उसका कैसे उसका विनाश करता है। उसका समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जीव द्रव्य से पृथकभूत यानी जीव से भिन्न ऐसे घट पट स्तंभ, घट यानी मटका जो होता है मटलू, पट यानी वस्त्र, स्तंभ यानी खंबा और अंधकार आदि पदार्थ जीव के लक्षण स्वरूप ज्ञान के विनाशक पाए जाते हैं। रात के एकदम अंधेरा हुआ, कोई लाइट नहीं, तो हमें कुछ दिख नहीं रहा, तो हमारा ज्ञान वहाँ हीन हो रहा है, तो वो अंधकार यहाँ निमित्त बन रहा है ना, वो ज्ञान की हीनता में, तो उसमें भी जीव का ज्ञान हीन होते हुए दिखाई जाता है। दिखाई देता है, और फिर हमने लाइट ऑन कर दिया तो सब दिखने लगा, तो वो उसमें निमित्त बना। तो ऐसे वहाँ होता है, तो यह भी वैसे वहाँ अन्य पुद्गलों को निमित्त कहा, वैसे यहाँ भी कर्म पुद्गल जो है वो भी इसी तरह से ज्ञान के विनाशक यानी निमित्त पने से ही बात है यहाँ हो सकते हैं।
देखिए यहाँ पर जो बताइए बात, पट यानी हम आंखों के सामने कोई ऐसा वस्त्र रखे तो सामने वाली चीज नहीं दिखाई देती है, और हम कोई हॉल में गए हैं जहाँ खचाखच भरा है लेकिन स्टेज के ऊपर जो बात चले और बीच में अपने सामने खंभा आ जाता है, अपन ऐसा 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 करके देखते हैं तो वो भी हमारे को डिस्टर्ब करता है ज्ञान में, ऐसा सबको लेना। और घट जो है उसके अंदर जो भी चीज रखी बाहर से तो हमें पता नहीं लगेगा, इस तरह से ये सारे ज्ञान में हमारे हिसाब से ऑब्स्टेकल्स हैं, तो इनका कहना है ज्ञान के वे विनाशक है।
स्वामी जी के प्रवचन में सामने ऐसी उंगली पकड़ी है और हम उसकी ओर देख रहे हैं, आगे आखा समुद्र पड़ा है तो वो नहीं दिख रहा है, उसकी आड़ में पूरा इतना समुद्र छिप गया। वैसे ये जीव राग की आड़ में पूरा ये चैतन्य भगवान अनंत ज्ञान स्वरूप उसको नहीं दिखने में आ रहा है, ऐसे वहाँ उन्होंने उपमा दी, दृष्टांत दिया है, क्योंकि राग ही मैं हूँ ऐसा मान रहा है ना ये जीव, तो उसकी राग की आड़ में। परसों क्या उदाहरण आया था, वो लापसी के, जिसे लापसी के लिए वो सेकते हैं परंतु वो गीले लकड़े के कारण इतना धुआं हुआ है, ना वो तपेला दिखता है ना लापसी दिखती है ना कुछ दिख रहा है वहाँ, वैसे राग का वहाँ उदाहरण दिया था। यहाँ बात अलग है, यहाँ तो ज्ञान और ज्ञान का आवरण इतनी बात लेनी है, और यहाँ उदाहरण ये दिया है कि अन्य पुद्गल भी ये ज्ञान में बाधा रूप से दिखाई देते हैं, तो कर्म भी उसमें ऐसा आवरण करने वाला हो सकता है। जो शंकाकार की शंका है वो तो पुद्गल है और ये जीव है, उसका लक्षण कैसे नष्ट हो सकता है, उसकी बात उन्होंने बता दी। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान का आवरण करने वाला और प्रवाहर स्वरूप से अनादि बंधन बद्ध पुद्गल स्कंध, क्या कहते हैं ये, किसके विरुद्धावली चल रही है, महाराजा अधिराज ऐसे कहते हैं ना राजा को। तो ज्ञान का आवरण करने वाले ने ज्ञानावरणीय की बात चल रही है, किसी भी कर्म को ये उपाधि लगे क्या, अनादि बंधन बद्ध, ऐसा नहीं कि अनादि से जीव शुद्ध था बाद में ज्ञानावरणीय उसमें किसके साथ मिल गया हो, अनादि से ही ये बंधन में बद्ध है जीव, जीव के साथ अनादि से ही बंधन में बद्ध है ऐसा कौन है, पुद्गल स्कंध, वही नहीं पुद्गल स्कंध, उसमें से नए नए कर्म आते हैं और पुराने चले जाते हैं, उसका उदय होता है तभी उसका फल मिलता है और नए नए बंद होता रहता है, जीव के मोह राग द्वेष के कारण नए नए कर्म बनते रहते हैं और पुराणों का उदय आता रहता है, पुराने का फल मिलता रहता है, और फिर उसमें जीव जुड़ता है और नए नए मोह राग द्वेष करता है और नए नए कर्म बांधता है, और ये उसका साइकिल चलता रहता है। आपका प्रश्न है भव्य और अभव्य जीवों के ज्ञान में कोई भेद होगा क्या, नहीं होगा, आपका ऐसा प्रश्न है और आप स्वयं उत्तर दे रहे हैं, अभव्य जीव कभी मिथ्यात्व से बाहर नहीं आएगा, तो मिथ्यात्व अवस्था में उसको सम्यक ज्ञान तो कभी नहीं होगा, ये तो बात सही है, परंतु उसको जो कहते हैं ना मैंने उघाड़ ज्ञान का उघाड़ बहुत अधिक भी हो सकता है, कितना शास्त्र में आपने बहुत बार सुना है, हाँ 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है, उसका पाठ ही हो सकता है, तो इतने 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है, दूसरों को पढ़ाता भी होगा कि नहीं होगा, इतना उस शास्त्र का ज्ञान है तो ज्ञानी कहलाता भी होगा, क्योंकि क्षोभसम ज्ञान बहुत है उसका, तो क्षोभसम ज्ञान वो सम्यक ज्ञान होगा ही, ऐसी बात नहीं, फिर भी वो अभव्य का अभव्य ही रहेगा, क्योंकि उसकी मान्यता उसके साथ झूठी मान्यता है उसके साथ।
ये बात हमें क्या बताती है, मैं जो बता रहा हूँ कि ये बात क्या बताती है कि श्रद्धा गुण का कार्य करेगा, श्रद्धा गुण के कारण ज्ञान गुण को हम कुछ नहीं कह सकते, और ज्ञान गुण भले अधिक हमारे हिसाब से विकसित हुआ है, 11 अंग और 9 पूर्व पढ़ता है, बताता है, स्वयं मुखोद्गत है, ऐसे ज्ञान को भी यहाँ मिथ्या ज्ञान कहा है। हम तो ऐसा मानते हो अभव्य पहले ही मिथ्या दृष्टि में रहेगा तो उसका ज्ञान एकदम कम रहेगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान का विकास जुदा है, श्रद्धा का विकास कहो या उसकी पर्याय कहो, उसकी क्वालिटी दोनों की अलग अलग है। एक के निमित्त से दूसरे को हम भले मिथ्या ज्ञान कहे, लेकिन ज्ञान का उगाड़ तो बहुत है, उसमें क्या है। यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, ये तो बात जुदी। एक द्रव्य के एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करेगा। अभी मिलेंगे 30 दिन।
देखो, उसने अपने को नहीं जाना, दुनिया को जाना, परंतु उसको भी पर है ऐसा नहीं जाना। उसमें भी अपनेपना, उसमें भी मानकर उसको भी अपने में डाल दिया, अपने खाते में उसको भी जमा कर दिया, और यही मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसी उसकी जानना भी चल रहा है वहाँ। मान्यता की अपेक्षा तो हम उसको समझाएंगे, क्योंकि मिथ्या ज्ञान समझाएंगे कैसे, परंतु वहाँ वो ज्ञान में भी वैसी विपरीतता चल रही है, कारण संबंधी विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता, स्वरूप विपरीतता, वो सब चल रही है उसमें। मिथ्या ज्ञान है वो, यानी अपने स्वरूप को जैसा है वैसा नहीं जानता है, कुछ अधिक अपने को मिलाकर जानता है और अपने में से कुछ न्यून करके जानता है। अभी जो द्रव्यार्थिक ने की बात आई थी, मैं केवल ज्ञान स्वरूप है हूँ, परंतु कैसे जानता है, अरे मैं तो अल्पज्ञानी हूँ, ऐसा ही वो अपना स्वरूप जानता है, पर्याय में अल्पज्ञान है ऐसा नहीं समझता। अभी उसकी चर्चा तो अभी द्रव्यान युग में चल ही रही है, अपना यहाँ विषय रह जाएगा। तो ये ज्ञानावरणीय कर्म कहलाता है, यह है ना, अनादि बंधन बद्ध पुद्गल स्कंद। अनादि बंधन बद्ध पुद्गल स्कंद तो सभी है, परंतु यहाँ उसके लिए एक और विशेषण बताया, ज्ञान को आवरण करने वाला ऐसा, उसको ज्ञानावरणीय कर्म कहा। अब अगला सूत्र, अगला सूत्र दर्शनावरणीय कर्म है। कौन कौन से कर्म है उनकी यहाँ बात चल रही है, मूल प्रकृतियों के यहाँ गिना रहे। पहला ज्ञानावरणीय बताए, दूसरा दर्शनावरणीय, ऊपर लिखा था ना दंशनावरणीयम, उसका उन्होंने अर्थ किया दर्शनावरणीय कर्म है। आत्मविषयक उपयोग को दर्शन कहते हैं। ये दर्शन संबंधी चर्चा तो हमने पहले भाग में भी बहुत की थी। सामान्य जिसको कहते हैं, सामान्य ग्रहण, यानी वस्तुओं में ये पेन है, ये पेंसिल है, पट्टी है, रबर है, ऐसा कोई भेद किए बिना जो सामान्य ग्रहण होता है उसको कहते हैं दर्शन। और उसमें जो भेद करके, और एक वस्तु में भी ये लंबी है, चौड़ी है, उसका रंग क्या है, ये जो भेद पूरे उसको आकार सहित कहते हैं, ऐसा जानना उसको कहते हैं, जानना यानी ग्रहण करना उसको कहते हैं ज्ञान। भेद सहित जानना वो ज्ञान है। और किसी में ऐसा कोई विशेषता नहीं करके उसका ग्रहण जो होता है उसको कहते हैं दर्शन। परंतु यहाँ आत्मविषय उसके आगे और जोड़ लिया, क्योंकि खाली ये वस्तुएं ऐसी नहीं, हम कैसे उसको ग्रहण करते, मैं ये जान रहा हूँ ऐसे है ना। हमने पूछा ये किस किस को दिख रहे हैं, तो सबने कहा हम मुझे दिख रहा है। तो मुझे दिख रहा है इसमें अपने को भी उसमें उसके साथ जाना है उसने, ऐसा किसी ने कहा नहीं कि बाजू वाले को दिख रहा है, सबने कहा मुझे दिख रहा है। जिसको जिसको दिख रहा है उसने क्या कहा, ये मुझे दिख रहा है, यानी उसमें मेरा अपना भी ज्ञान आया कि नहीं साथ में। देखो क्या कहते हैं, आत्मविषयक उपयोग को दर्शन कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उसके और चर्चा करेंगे, इसके पहले भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई अपने यहाँ। यह दर्शन ज्ञान रूप नहीं है, क्योंकि वो क्यों बराबर करना, उसमें रफर आया है, क्योंकि ज्ञान बाह्य अर्थों को विषय करता है तथा बाह्य और अंतरंग विषय को करने वाले ज्ञान और दर्शन की एकता नहीं है, क्योंकि वैसा मानने में विरोध आता है। यानी इसमें ऐसा नहीं समझना कि पर को जाने वो ज्ञान है और आत्मा को जाने वो दर्शन है, ऐसा यहाँ नहीं है। हमने नियम सार में पढ़ा है ना, ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है और दर्शन भी स्वपर प्रकाशक है। फिर भी यहाँ आत्मविषयक, आत्मविषयक जो लिखा है उसकी चर्चा करेंगे हम। और ज्ञान को ही दो शक्तियों से युक्त नहीं माना जा सकता, क्योंकि पर्याय के अन्य पर्याय का अभाव माना गया है। यानी जो ज्ञान की पर्याय है वो दर्शन की पर्याय नहीं है। ज्ञान को दर्शन की पर्याय होने में विरोध है और दर्शन को ज्ञान की पर्याय होने में विरोध है। दर्शन की पर्याय अपनी उसकी होगी, ज्ञान की पर्याय उसकी अपनी होगी। एक दूसरे का कार्य एक दूसरा गुण नहीं करता है। प्रत्येक गुण की अपनी अपनी स्वतंत्र पर्याय होती है। इसलिए ज्ञान दर्शन लक्षणात्मक जीव मानना चाहिए। हम जीव को चैतन्य स्वरूप कहते हैं। वो चैतन्य की हम दो विभाग कर देते हैं, ज्ञान और दर्शन, जिसमें सामान्य ग्रहण को सामान्य में, ऐसा नहीं लेना कि कोई भी वस्तु सामान्य विशेषात्मक है उसमें सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन, ऐसा अर्थ नहीं है। ख्याल है? ऐसा मानेंगे तो सामान्य को जानने वाला वो ज्ञान और विशेष को जानने वाला वो है उल्टा। सामान्य को जानने वाला यानी सामान्य विशेषात्मक में से सामान्य को जानने वाला दर्शन है और विशेष को ज्ञान जानने वाला ज्ञान है, ऐसा अगर कहेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि सामान्य विशेष के बिना नहीं है, विशेष सामान्य के बिना नहीं है। वो जो तो फिर कहेंगे ये आप सामान्य विशेष की चर्चा तो समय सार में तो इतनी करते हो, तो वहां नए की चर्चा है। तो पदार्थ को जानेंगे तो पदार्थ पूरा सामान्य विशेषात्मक है, परंतु अनेक पदार्थों में भेद किए बिना जो ग्रहण है उसको दर्शन कहते हैं। ग्रहण इसलिए कहा कि ज्ञान कहते तो वो ज्ञान हो जाता है। ग्रहण कहने से उसमें दर्शन ज्ञान दोनों आ गए। उसी को यहाँ आत्म विषय कहा है, उसी को यहाँ सामान्य कहा है। यह दर्शन आवरण करने के योग्य है, क्योंकि विरोधी द्रव्य के सन्निधान होने पर भी, अब यह वाक्य हमने पहले भी देखी थी, विरोधी द्रव्य ने यहाँ कौन सा द्रव्य है? दर्शनावरण कर्म। तो विरोधी द्रव्य का सन्निधान यानी समीपता, यानी दर्शनावरण कर्म की समीपता होने पर भी इसका यानी दर्शन का निर्मूल रूप से विनाश नहीं होता। यानी दर्शनावरण कर्म भी है फिर भी दर्शन पूरा मिट गया है जीव का, ऐसा कभी नहीं होता। निगोद में भी दर्शन का कार्य चलेगा कि नहीं चलेगा? कौन सा दर्शन होगा उसका? हाँ, अचक्षु दर्शन। स्पर्शन संबंधी ज्ञान है वहां पर, तो वैसा उसको अचक्षु दर्शन वहां चल रहा है।
अचक्षु दर्शन का दर्शन तो होता नहीं।
हाँ, कौन सा दर्शन? वो
अचक्षु दर्शन में दर्शन नहीं होता है, वहां पे तो स्पर्शन से मालूम पड़ता है, तो वहां पे
दर्शन नहीं होता है। नहीं, अचक्षु दर्शन आप कह रहे हैं और दर्शन होता नहीं कह रहे हैं। देखो देखो, पहले मैं ये अचक्षु दर्शन किसको कहना कौन सा दर्शन? दर्शन यानी देखना, ऐसा मत ले। हाँ, देखो, हमेशा छद्मस्थों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। सामान्य से जो ग्रहण है, अभी स्पर्श में कोई डिफरेंस किए बिना, ये ठंडा है कि गर्म है, ऐसा डिफरेंस किए बिना जो कुछ वहां ग्रहण होगा उसको कहेंगे ये दर्शन। अब ये अचक्षु दर्शन क्यों कहा? चक्षु इंद्रियों को छोड़कर जो अन्य इंद्रिया है, अभी हमें भी पंचेंद्रिय जीवों को जो अचक्षु दर्शन है वो क्या है? अभी सुना है, कोई आवाज सुनाई दी? हाँ, यानी चक्षु इंद्रिय को छोड़कर उसके अलावा अन्य इंद्रियों का जो ज्ञान होता है उसके पूर्व में होने वाले ग्रहण को दर्शन अचक्षु दर्शन कहेंगे। और चक्षु संबंधी जो ज्ञान होता है वो ज्ञान के पहले दर्शन हो जाता है। यानी सबसे, अभी आपने आंख खोलकर देखी तो सबसे पहले आपको दर्शन हुआ, यानी दर्शनोपयोग हुआ। दर्शन यानी हम भगवान का दर्शन करते, वो दर्शन मत लेना, ख्याल है ना? जिसको हम देखना कहते वो दर्शन नहीं लेना यहाँ, ये जानना देखना वाला दर्शन लेना। नहीं समझे आप? तो खाली आँख से ही नहीं देखते हम, प्रेरणा भी ने कुछ बनाया घर में, आपने हम मुझे नहीं भूख नहीं, तो कहते वो थोड़ा चक्के तो देखो, तो ये रसनेन्द्रिय के द्वारा चक्के तो देखो, कहते ना ये ज्ञान के पूर्व जो प्रतिभास है, जो ग्रहण है, जो जहाँ कुछ जो चैतन्य का व्यापार है, उसको दर्शन कहते हैं। फर्स्ट जो उसका कोई रिसेप्शन कहो, जो कुछ कहो, क्या कहेंगे अंग्रेजी में, परसेप्शन क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा ना, और रिसेप्शन दर्शन होगा मेरे ख्याल से, देखना पड़ेगा। परसेप्शन तो परसीव हो गया, ज्ञान हो गया, वो रिसेप्शन जो बिगिनिंग में जो कुछ होगा, या अटेंशन कहो, कुछ जो कुछ वहाँ आपका अभी अंग्रेजी में नहीं घुसेंगे हम, क्योंकि हिंदी में ही समझना मुश्किल है ये दर्शन के बारे में बहुत कंफ्यूजन चलता है, क्योंकि स्पष्ट शब्दों में लिखा है जो आत्मा को जाने वो दर्शन, आत्म उपयोग को दर्शन का, यानी ऐसे ना, मैं इसे जान रहा हूँ, मुझे ये रबर दिखा तो किसको दिखा, मुझे दिखा, तो मैं इसे जान रहा हूँ, ये जो मैं को पकड़ कर ये ज्ञान की बात आती है, अपने आप को पकड़ कर ये जो उसमें, उसको दर्शन कहा है। फिर भी दर्शन स्व पर उपयोग यानी स्व पर प्रकाशक है, उसकी बात यहाँ समझ लेना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट शब्दों में कुंदकुंदाचार्य ने लिखा है, कोई ऐसा नहीं समझे कि स्व को जाने वो दर्शन और पर को जाने वो ज्ञान, ऐसा भी नहीं होता। उसमें उसके जो उसके अविभाग प्रतिच्छेदों में ही नापेंगे उसको, और ये जो पर्याय ज्ञान भी शुद्ध ज्ञान का भेद है, मति ज्ञान का भी नहीं है, उसमें भी जो उसके योग्य जो कुछ होगा उतना,
क्योंकि दर्शन उपयोग के बाद पहले मति ज्ञान उपयोग होगा, और मति ज्ञानों के बाद श्रुत ज्ञान होगा,
उपयोग पूर्वक मति ज्ञान,
और मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान,
मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान, इसलिए श्रुत ज्ञान को दर्शन उपयोग नहीं कहा उसके पहले। नहीं ऐसा नहीं है
समझे नहीं, ये पर्याय ज्ञान अक्षर ज्ञान वगैरह जो हम सीखेंगे वो श्रुत ज्ञान के भेद है, और इसके श्रुत ज्ञान होने के पहले मति ज्ञान होता ही है, और मति ज्ञान होने के पहले दर्शन होता ही है, बस क्रम
देखो दर्शन ज्ञान दर्शन का देखो, एकेंद्रिय उनके एकेंद्रिय जीवों में उनके योग्य दर्शन और ज्ञान की जो शक्ति वो प्रकट होगी उनके योग्य। अभी उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि तो इतना दर्शन किया उतना दर्शन किया,
देखिए ना हम पंचेंद्रिय जीव है, हमारे भी मति ज्ञान में डिफरेंस है ना, हम तुम जो जानते कोई मतिमंद व्यक्ति है तो उसके भी मति ज्ञान तो है, जानने की शक्ति कम है, वैसे एकेंद्रिय में भी जानने की शक्ति कम अधिक हो सकती है, नहीं तो पर्याय ज्ञान के इतने भेद कैसे होंगे, पर्याय समास के जो भेद हमने देखे थे अनंत 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 है, वो आएगा, अब ये थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो वो भी आएगा, फिर और प्रश्न उठेंगे।
ये तो इससे भी हम सीधे करते, चक्षु दर्शनावरण अचक्षु दर्शनावरण देशघाती प्रकृतियां है, तो उसमें भी स्पर्धक अलग अलग क्वालिटी अलग अलग यानी डेंसिटी के होंगे ना, देशघाती भी है उसमें, सर्वघाती भी है, और फिर उसका क्षोभशम चलता है, क्योंकि हमने देखा था दर्शन जो है वो क्षोभशम भाव है, क्षोभशम में देखा था हमने, जैसे ज्ञान में तीन अज्ञान है और चार सुज्ञान है, क्षोभशम ज्ञान है, क्षोभशम ज्ञान है थोड़ा आवरण और थोड़ा खुला, तो वैसे दर्शन में भी थोड़ा आवरण और थोड़ा खुला, और जो केवल दर्शन है, केवल ज्ञान है, वो तो क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन का पूर्ण रूप से आवरण का नाश है वहाँ पर। कौन सा अज्ञान? आपका प्रश्न है अज्ञान, वो ज्ञान का भेद नहीं है। अब फिर अज्ञान में दो बातें आएगी, एक तो मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कहते, कुज्ञान को अज्ञान कहते, वो क्षोभम ज्ञान है, वो ज्ञान का भेद कहेंगे, प्रकट ज्ञान कहेंगे उसको। और जो औदयिक अज्ञान है, अभी हमें औदयिक ज्ञान नहीं है, आपको होगा, होगा को, हमें कोई औदयिक ज्ञान नहीं है आपको, हाँ केवल ज्ञान भी नहीं है ये हमारा। अभी ये आप समझो बराबर, जितना ज्ञान हमारा अप्रकट है उसका अज्ञान है, वो औदयिक अज्ञान है। औदय क्यों का? अवधि ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है, मनपर्य ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है। और कैसा उदय? पूरा सर्वघाती का उदय। इसलिए हमारा अवधि ज्ञान बिल्कुल प्रकट नहीं है।
तो जो तीन फूकना हम लोग जो देखते हैं, वो ज्ञान उतना प्रकट है पर उसमें विज्ञापन,
हाँ, जो जो तीन कुज्ञान प्रकट है बिल्कुल, वहाँ क्षोभम चल रहा है ज्ञानावरण का भी और जीव के भी, ज्ञान का उघाड़ है वहाँ। यदि ज्ञान का उघाड़ नहीं मानेंगे तो ये अपना जो निर्णय करने का उत्कृष्ट कार्य है, जो है सम्यक तो प्राप्त करने के पूर्व जो तत्व निर्णय की बात चलेगी वो कौन से ज्ञान के द्वारा कर रहे हैं? जो प्रकट है उसी में करेंगे ना, कि जो है ही नहीं उसमें करेंगे? यानी मिथ्या ज्ञान करके उसको ऐसा कोई जरूरत नहीं है उसको कुछ हीन करने की। वो तो जीव का लक्षण है और उस लक्षण के द्वारा ही अपने आप को पकड़ना है। प्रकट लक्षण है और वही सारा निर्णय करने वाला है और निर्णय करके आपको बताएगा, फिर आपने खाली साइन करनी, हाँ ये मैं हूँ। हाँ, आपका ऐसा प्रश्न है, ये ज्ञानावरण दर्शनावरण का जो उघाड़ है या उसका जो कुछ आवरण है या उघाड़ जो कुछ है, तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? तो वैसे ही होगा, जिसको अवधि ज्ञान है तो उसको अवधि दर्शन होगा ही। हाँ, अभी उघाड़ है, ऐसा को होगा ही नहीं, ये सब एक दूसरे पूरित हो ही जाते अपने आप। जैसे किसी को पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म का उदय है ऐसा हम कहेंगे, और उसको खाली एकेंद्रिय संबंधी ज्ञान का उघाड़ है ऐसे कहेंगे, तो ये तो ज्ञानावरणीय है और वहाँ तो उसका भी उतना ही उघाड़ होगा ना, जो पंचेंद्रिय जितना ज्ञान का उघाड़ होगा ना, उनको भी उतना उघाड़ है। हाँ, पंचेंद्रियों वाला मिनिमम ज्ञान है ऐसा कहो आप। मतिमंद में भी पंचेंद्रिय जितना ज्ञान है परंतु वो मिनिमम है, जिसको हम मतिमंद कहते हैं, मेंटली रिटार्डेड कहते हैं, उनमें भी वो सभी पांचों इंद्रियों संबंधी ज्ञान का विकास तो है वहां पर। चल अभी हम यहाँ तीसरी लाइन में आ गए दर्शनावरण कर्म के, और ज्ञान को ही दो शक्तियों से युक्त नहीं माना जा सकता, ये भी बात हो गई थी, क्योंकि पर्याय के अन्य पर्याय का अभाव माना गया, इसलिए ज्ञान दर्शन लक्षणात्मक जीव मानना चाहिए, यानी ये दोनों ही उसके लक्षण हैं। यह दर्शन आवरण करने के योग्य है, जैसे वहाँ आवरियमान हमने ज्ञान को कहा था, यह दर्शन की बात हुई, क्योंकि हम दर्शनावरण कर्म की चर्चा कर रहे हैं, तो दर्शनावरण कर्म के बारे में आवरियमान कौन है यहाँ पर? दर्शन, और आवारक कौन है? दर्शनावरणी कर्म। देखो, दर्शन आवरण करने के योग्य है क्योंकि विरोधी द्रव्य के सन्निधान होने पर भी, विरोधी द्रव्य ने दर्शनावरण कर्म का सन्निधान यानी समीपता होने पर भी, इसका यानी दर्शन का निर्मूल रूप से विनाश नहीं होता। यदि दर्शन गुण का निर्मूल विनाश होने लगे तो जीव के भी विनाश का प्रसंग प्राप्त होता है। जो बात हमने ज्ञान के बारे में कही थी वही दर्शन के बारे में भी, क्योंकि लक्षण के विनाश होने पर लक्ष्य के अवस्थान का विरोध है, यानी लक्षण समाप्त हो जावे तो लक्ष्य भी मिट जावेगा, रहेगा ही नहीं, उसको भी हाँ अवस्थाने रहने का, लक्ष्य के सत्ता का रहने का, अवस्थित यानी रहना, तो उसका अवस्थान यानी उसका रहना बन नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि ज्ञान और दर्शन के जीव का लक्षणत्व असिद्ध भी नहीं है, ये दो बार निगेटिव, असिद्ध नहीं है ने प्रसिद्ध है। यानी ज्ञान और दर्शन जीव का लक्षण है, ये बात प्रसिद्ध है, क्योंकि दोनों के अर्थात ज्ञान और दर्शन के अभाव होने पर जीव द्रव्य का ही अभाव प्राप्त होता है, जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है वो जीव भी नहीं है, ये सिद्ध होती है ना बात। शंक आत्म विषय का उपयोग, क्योंकि मैं इसको जान रहा हूँ, ये मैं की भी वहाँ प्रतीति चल रही है, मैं पर पदार्थों को जान कौन रहा है, मैं इसको जान रहा हूँ, ऐसी बात है ना, अकेले पर को नहीं हुआ, मैं के साथ, तो आत्म विषय लिया उसको। भाई अगर पूरा हम सर्वथा ऐसा ही मानेंगे तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं हो सकता, आत्मा का दर्शन ही होता है ऐसा मानना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ ये स्व विषयक और पर विषयक यानी बाह्य अर्थों को विषय करता है, ये ज्ञान और दर्शन में डिफरेंस बताने के लिए ये है भाई, बिल्कुल इतना ही समझना उसमें, क्योंकि दर्शन भी स्व पर प्रकाशक है, मैं इसको जान रहा हूँ ये दर्शन का ना, ऐसा नहीं मैं को जान रहा हूँ ऐसा थोड़ा ही कहा, अकेले आत्मा को ही जानता है ऐसा नहीं, पहले अपने को पकड़कर बाह्य पदार्थों को पकड़ रहा है, परंतु बाह्य पदार्थों में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं चल रही, उसको दर्शन कहा, नहीं तो ऐसा मानना पड़ेगा आत्मा को जाने वो दर्शन और बाह्य को जाने वो, तो उनका कोऑर्डिनेशन कैसा हुआ, क्यों दर्शन ने तो आत्मा को जाना और ज्ञान ने तो पर को जाना, जाना ही नहीं ऐसा होगा ना उसमें। हाँ
बाह्य और अंतरिक्ष शब्द से क्या बताना क्या चाहते,
ये सामान्य से और विशेष से बस, वहाँ सामान्य कोई आत्म कहाँ है, ऐसे पहले भाग में ये चर्चा हो चुकी है अपनी, वहाँ भी दो तीन पेज में हमारी वो चर्चा चली थी, जो सामान्य कहा ना उसी को आत्म विषय कहा था। ये कंफ्यूजिंग है बहुत, और ये भाषा ये ऐसी अटपटी है कि उसमें से पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है।
ऊपर जो लिखा है उसमें उसने कौन सा शब्द, यही शब्द वापरा,
देखो अपो विषयो उयोगो दंशनम, वहाँ भी आत्म विषय उपयोग ही लिखा है, उसको दर्शन कहा, और ऐसा भी कहा ये ज्ञान का भेद नहीं है, तस्य बज्जट्ठ विषयत्ता दो, क्योंकि वो बाह्य को विषय करता है, ये बाह्य को और आत्मा को विषय करता है, इसमें ये वो कन्फ्यूजन चलती है, क्योंकि दोनों ही स्वपर प्रकाशक है। हाँ ऐसा दोनों है, अंतर भाई ज्ञान भी नहीं, तो वो आत्मा को जान नहीं सकता था, तो आत्मा को जाने वो दर्शन हो जाता। अभी ये जो है ना वो बात थोड़ी जो जितनी है देखेंगे, ये तो बात
ट्रांसलेशन में कोई
नहीं, नहीं वैसे ही है, ट्रांसलेशन वैसे ही किया, और यही बात वो यति ऋषभ आचार्य की वो न्याय दीपिका में भी यही बात है, वहां तो स्पष्ट में ऐसे लिखा है आत्मा को यानी मैं इसको जानता हूँ, ये जो मैंपने का ग्रहण है वही दर्शन है, और इसका जानता हूँ तो ये ज्ञान हो गया। हाँ ये वही बात यहाँ भी कही है, परंतु हमें सर्वथा वैसा नहीं समझना चाहिए, नहीं तो ज्ञान पर कोई जानता है और दर्शन आत्मा को ही जानता है, ऐसा उसमें से अर्थ नहीं निकालना। क्योंकि धवला में ये चर्चा आई थी कि पदार्थों में कोई डिफरेंशिएट किए बिना, यानी उसमें कोई ये जीव है कि पुद्गल है, इतने भी उसमें विशेषता नहीं किए बिना जो ग्रहण होता है उसको दर्शन, उसको सामान्य ग्रहण कहते हैं, और उसी को आत्मग्रहण कहा है। वहां आत्मग्रहण जो लिखा ना, आत्म विषय करना है ने, वो किसी में कोई ऐसी विशेषता किए बिना जो सामान्य से ग्रहण किया है। एक पदार्थ में होने वाले सामान्य का ग्रहण ऐसा नहीं समझना उसमें। अभी जो कुछ है वो जानेंगे। हाँ, अभी नीचे जो शंका लिखी है वहां पढ़ेंगे। यदि ज्ञान और दर्शन के अभाव होने पर जीव द्रव्य का ही अभाव प्राप्त होता है तो होने दो। शंकाकार तो अपनी शंका की पड़ी है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं, क्योंकि स्वपर व्यवसायात्मक, स्वपर व्यवसाय, व्यवसाय यानी वो ज्ञान का व्यवसाय क्या है, तो जानन रूप, तो स्वपर को जो जानन रूप जो है प्रमाण के अभाव में प्रमाण ज्ञान को कहते हैं। यानी ज्ञान के अभाव में ज्ञान कैसा है, स्वपर को जानने वाला, तो स्वपर को जानने वाले ज्ञान के अभाव में प्रमेय रूप शेष द्रव्यों के भी अभाव की आपत्ति आती है। प्रमेय यानी ज्ञेय, यदि हम ज्ञान का ही अभाव मानेंगे, क्योंकि इसने लक्षण को अभाव माना, लक्षण का अभाव होने तो होने दो, जीव का विनाश हो जाएगा तो होने दो, तो यहाँ कहते हैं स्व और पर को जानने वाले ज्ञान का ही अभाव हो जाएगा तो ज्ञेय रूप शेष द्रव्यों को भी उसका भी अभाव हो जाएगा, ज्ञेय रूप द्रव्य भी नहीं रहेंगे, ज्ञान के अभाव में ज्ञेयों का भी विनाश होने का प्रसंग आएगा। ऐसा कभी होता नहीं है, इसने ऐसी कल्पनाएं जो दौड़ाता है ना, तो ऐसा अगर मानेंगे तो क्या दोष आता है, तो यदि ज्ञान का ही विनाश मानेंगे तो ज्ञेयों का भी विनाश हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर ये बात समझा रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य में प्रमेयत्व नाम का गुण है, तो प्रमेयत्व गुण ये दर्शाता है कि दूसरे के ज्ञान में झलके, ये सामान्य गुण होने के नाते सब द्रव्यों में है। अब ऐसा कहते हैं कि हम पर को नहीं जाने, ऐसा हमने मान लिया, यानी प्रमाण के अभाव में, कि प्रमाण क्या है कि स्व पर जानने का उसका स्वभाव है, उसको ही हम नहीं मानेंगे, ये कहते हैं ना ज्ञान दर्शन अभाव का होने तो उसमें क्या होता है, तो कहते हैं कि प्रमेय स्वरूप जो शेष द्रव्य है उन द्रव्यों के भी अभाव की आपत्ति आएगी, यानी अभी उनका जो प्रमेयत्व नाम का गुण है वही काम नहीं करेगा, और करेगा तो जानने वाला सामने कोई है नहीं ना, इसलिए कहते हैं कि उसका भी अभाव, मतलब उसकी भी नष्ट होने की आपत्ति आएगी।
आपका प्रश्न है वो स्व पर व्यवसायात्मक क्यों लिखा। हाँ, व्यापार
परिणाम,
ये जो न्याय की जो भाषा है, परीक्षा मुख आदि जो ग्रंथ है उसमें इसकी जो डेफिनेशन करना सूत्र होते हैं, प्रमाण किसको कहना, तो वहाँ ये स्व पर व्यवसायात्मक आदि जो कुछ बातें हैं, तो ये जो हम सब चर्चा कर रहे हैं ना, ये तो न्याय की भाषा में चल रहे हैं, जो अपना विषय यहाँ नहीं हुआ है, तो इसलिए उसमें से कुछ कुछ शब्द हमें ऐसे मोटे और अटपटे लगते हैं। तो यहाँ इसलिए वो स्व पर प्रमाण यानी ज्ञान इतना समझ लेना, ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अब यहाँ कहाँ भी है करके ऊपर गाथा लिखी है, ये जो गाथा है वो भावपाहुड़ में कुंदकुंदाचार्य ने लिखी हुई गाथा है। हाँ, नियम सार में भी है, यस, ऐसा में एक को में सात आपा, क्योंकि ये जो उक्तम च कहकर उन्होंने बहुत सारे, पहले भी हमने देखा था प्रवचन सार पंचाशिकाय कितनी गाथा यहाँ उद्धृत की है धवलाकार ने, तो कौन पहले हुए, धवला पहले लिखा क्या समय सार प्रवचन सार, वो तो बहुत पहले लिखा हुआ है, कुंदकुंदाचार्य बहुत पहले हुए, और उनके मेरे ख्याल से 800 साल बाद इसकी रचना की थी। अब हम ऊपर पढ़ते एक को में ससदो अपाणान दंसन लखनो से साधु बाहिरा भावा सवे संजोग लखना, क्या कहते, ज्ञान दर्शन लक्षणात्मक मेरा आत्मा एक है, शाश्वत है यानी नित्य है, सत्सदो लिखे ना शाश्वत, एको में। अभी हमारी जो 38वीं गाथा चल रही है उसमें क्या बताया है, मैं एक शुद्ध सदा रूपी, वहाँ भी एक की और शुद्ध की बात चल रही, और यहाँ भी मैं एक हूँ और शाश्वत हूँ की बात चल रही है। और कैसा ज्ञान दर्शन लक्षणों, और वहाँ ज्ञान दर्शन मय अरे ऐसी बात की। किसी भी शास्त्र में तो यही डेफिनेशन आएगी ना। तो ज्ञान दर्शन लक्षणात्मक मेरा आत्मा एक है, शाश्वत है, शेष सर्व संयोग लक्षणात्मक भाव बाहरी है। ये संयोग लक्षणात्मक भाव में हमने जो अभी अनेक भाव, जो क्रम रूप अक्रम रूप भावों की चर्चा चल रही ना अभी, ये जो मार्गणा वाले भाव हो गए या अलग अलग गुणस्थानों की जो बात है, ये संयोग के कारण होने वाले जो भाव है वो अनेक है, वो मेरे बाहर है, मैं तो एक हूँ। वहाँ जो अलग अलग गति होती है, ये जो कषाय कोई अलग अलग हो गए, योग अलग है, लेशा अलग है, तो उसकी अपेक्षा से ये संयोग लक्षण वाले बाह्य भाव बहुत है, मैं तो एक शाश्वत आत्म पदार्थ हूँ, ऐसी बात है। समय सार में तो वो वही चर्चा भी हाँ बिल्कुल अभी सभी ग्रंथों में तो कोई भी आचार्य, उन्होंने तो ये लिखे है, और अन्य भी आचार्य लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। वो तो ये शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, ऐसे कोई भी अलग अलग आचार्य कहेंगे, या कोई ज्ञानी भी है, अलग अलग पद्धति से उसको पुटअप करेंगे अभी। यानी शब्दों में फर्क हो सकता है, भाव तो सभी का एक जैसा ही होगा। अभी ये जो असरीरा जीव गणा उवजुत्ता दंसने यणाणेय सायारमणायारम लक्षणमेयम तु सिद्धानम। जो अशरीर है, अशरीरा लिखा ना, जीव घना यानी जीव होकर प्रदेशों की अपेक्षा घन रूप है, असंख्यात प्रदेशी एक है ना, घन रूप है, प्रदेशों की अपेक्षा घन है। दंस उवजुत्ता दंसनेय नानेय, ज्ञान और दर्शन में उपयुक्त है, उपयोग रूप उनका चल रहा है, ज्ञान दर्शन रूपी उपयोग उनका चल रहा है, उनका कार्य चल रहा है। जैसे सिद्ध होने के बाद अभी कुछ करना धरना नहीं रहा, अभी वो क्या करेंगे, यानी पर का कुछ करने को ही हम करना मानते हैं, अपनी पर्याय नित्य चलती रहे उसको हम करता नहीं मानते, करना कुछ मानते नहीं, ये शून्य हो गए, अभी करना धरना सब मिट गया, उसी को सिद्ध अवस्था मानते, वही मोक्ष है, वे सिद्ध है। इस प्रकार सब हंस रहे, क्योंकि शाम को वो एक कुछ भाई साहब आए थे, बहुत चर्चा हुई थी, वो प्रवचन में भी बात आई थी, तो उसकी फिर रिपीटेशन नहीं करते हूँ यहाँ। तो पुरुषार्थ क्या, सिद्धों को क्या पुरुषार्थ करना है, ऐसा मानते वे, चर्चा करने आए थे नहीं, सिखाने आए थे। ये कहाँ की दृष्टि है, मिसलीड किया होगा, कोई नहीं मिसलीड करता, स्वयं मिसलीड वही मान्यता बनाए रहे, निमित्त से कुछ नहीं होता। यदि यदि वो सुधरने की नहीं, कोई बात है नहीं, आपकी अपेक्षा में क्या, कथन में होगा, हम निमित्त से कथन करेंगे, परंतु अभी हमारे अभिप्राय में होना चाहिए कि भले वो यहाँ आया है सुनना चाहते, अगर समझना चाहता है तो आप तो कहते पुरुषार्थ वहाँ भी है, निमित्त से कार्य नहीं, तो यह आपकी बात मुझे समझ में नहीं है, आप कैसे, ऐसे भी हो सकता है ना, वो समझना चाहता है। अभी हमारे शाम को आने वाले या कहीं भी आने वाले तो मेजॉरिटी तो वही, तो जो अन्य मत में थे वो भी आ गए, वो क्यों आ गए, वे भी जन्म से तो वही बातें सुनते थे, फिर भी उनके अंदर की जो योग्यता है, जिज्ञासा है, और सही ज्ञान प्रकट उनके अपनी पर्याय से हुए, किसी निमित्त से नहीं हुआ है, कुंदकुंदाचार्यों के शास्त्र पढ़े इसलिए हुआ, ऐसा भी नहीं है, निमित्त होता है जरूर, परंतु उस जीव की अपनी योग्यता है, वहाँ उसकी अपनी तत्व जिज्ञासा है, और जिसको ऐसी तीव्र रुचि अंदर पड़ी उसको सहज रूप से निमित्त भी वैसे मिल जाते हैं। कहने में ऐसा आएगा कि निमित्त से हुआ, कहने में कहेंगे हम गुरुदेव के कारण हमको यह मार्ग मिला, हम तो जैनियों में दिगंबरों में ही जन्मे थे बचपन से, वो तो सब यात्रा वात्रा सब करते थे, बहुत धार्मिक कहलाते थे, मगर कुछ नहीं गंध था, ये थोड़ी बहुत बातें सुनी थी, नहीं ऐसी नहीं, बिल्कुल तत्वज्ञान के झीरो है, ऐसा भी नहीं है, ये बारह भावना ये वो सब चलता है, ऐसा नहीं है कि कुछ था नहीं है, शास्त्र तो सभी थे, मगर ये जो उसका मर्म है वो नहीं था पता।
नहीं, कभी कभी ऐसे भी मिसलीडिंग अपने को भी हो जाता है, कि होती नहीं है वो तो उनके फल भोग रहे हैं, तो ऐसा मिसलीडिंग हो जाता है कि अभी ये वो उनका पुरुषार्थ वहाँ तक गया।
बराबर है, क्योंकि ये मिसलीडिंग होता है क्योंकि हम अपने दिमाग से अर्थ लगाना चाहते हैं।
पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, मैं आपको पूछूंगा कि प्रत्येक द्रव्य पर्याय रहित हो सकेगा क्या, तो जो मूल बात अपने ध्यान में है ये तो ऐसे तो कथन में तो
इसीलिए
एक दो लाइन में कितनी बातें बताएंगे, ख्याल में है ना, लाइन में
होती है या नहीं होती है।
बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सर्वज्ञता जो है वह तेरहवें गुण स्थान में जो फल भोग रहा है लेकिन उनके गुणों के परिणमन नहीं हो रहा है, ऐसी बात कहाँ आई।
गुण वो क्या है,
ये
गलत फहमी का, जब द्रव्य गुण पर्याय का सही स्वरूप मालूम नहीं है, सामान्य गुण मालूम नहीं है, सात तत्व आदि जो है उसका सही स्वरूप मालूम नहीं, बेस जिसको पता नहीं है, और जाके समय सार प्रवचन सार पढ़ने लगे, ना नयों का ज्ञान है ना कुछ, और फिर ऐसे अपने भ्रांति अपने मन से कर लेता है,
और फिर समझता है पूछने लगे कि रूपी द्रव्य और अरूपी द्रव्य इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो हमने कहा भाई हमारा तो कुछ कहना नहीं, जो जिनेंद्र भगवान ने बताया वो हम आपको बता सकेंगे, उसकी बात उठाई नहीं फिर बाद में उन्होंने। मतलब सामने वाला जो जीव होता है वो जिज्ञासा से पूछता है तो समझने के लिए आता है वो, और ये समझाने के लिए आते हैं तो फिर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। चलो जाने दो, अपना विषय चले,
अपना रह जाएगा, उसकी मान्यता उसके पास। हाँ देखो, ये सिद्धों का लक्षण बता रहे थे, जो अशरीर है, जीव होकर प्रदेशों की अपेक्षा घनरूप है, ज्ञान और दर्शन में उपयुक्त है, वे सिद्ध है। इस प्रकार साकार और अनाकार यह सिद्धों का लक्षण है। यहाँ साकार किसको कहा, ज्ञान को, और अनाकार दर्शन को कहा। अनाकार यानी पदार्थों की जो विशेषताएं है उसको ग्रहण नहीं, वो बस उसकी सत्ता का ग्रहण है, सत्ता का ग्रहण है बस इतना ही, वो जीव है कि पुद्गल है इतना भी नहीं, पदार्थों स्व की भी सत्ता पर की भी सत्ता, सत्ता का ग्रहण, उसको आत्मविषय कहो तो कहो आप। यह निराकार ग्रहण है। इस प्रकार के दर्शन गुण को जो आवरण करता है वह दर्शनावरणीय कर्म है, अर्थात जो पुद्गल स्कंध, अभी दर्शनावरणीय कर्म ये क्या है, पुद्गल स्कंध है, उसके बारे में भी बता रहे, मिथ्यात्व असंयम कषाय और योगों के द्वारा कर्म स्वरूप से परिणत होकर ये पुद्गल स्कंध कर्मरूप हो गया है, पुद्गल स्कंध दर्शनावरण कर्म रूप से परिणत हो गया, यानी कर्म ये उसकी पर्याय है। बराबर, क्यों हुआ परिणत, उसमें निमित्त कौन था, जीव के कौन से भाव बताए, अभी चार भाव कौन से बताए, मिथ्यात्व असंयम कहो या अविरति कहो, कषाय और योग, ये प्रमाद भी उसमें ही गर्भित है, कहीं कहीं कषाय प्रमाद कषाय योग ऐसा भी कहते, और प्रमाद को नहीं भी कहेंगे तो उसमें गर्भित है ऐसा समझना, मिथ्यात्व असंयम कषाय और योग, इसके कारण कर्मरूप होने योग्य पुद्गल कर्मरूप परिणत होते हैं, जिसमें योग्यता पड़ी वही होगी, नहीं तो सारे लोकाकाश के पुद्गल नहीं, हमारे राग द्वेष हो रहे हैं सबके सब अभी अपने कर्मरूप हो गए, ऐसा नहीं है, कुछ जिनमें योग्यता है और उस समय उस रूप परिणमने वाले हैं अपने उपादान शक्ति से, तो ये निमित्त बताया, कर्म स्वरूप से परिणत होकर जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से समवेत है, एक क्षेत्रावगाहन है उसी क्षेत्र में, जिस आकाश के प्रदेश में जीव रह रहा है उसी आकाश के प्रदेशों में वो कर्म भी आकर वहीं पर स्थित है, कुछ काल के लिए वो वहीं पर स्थित है। अब हम घूमने गए तो घर में कर्म नहीं रहेंगे, वो जीव के प्रदेशों में ही रहेंगे। अन्य भवों में चले जाएंगे तो वो कर्म भी जीव के साथ चले जाएंगे, धन संपत्ति यहीं पड़ी रहने वाली है। और वो जोड़ने के लिए जो जो कुछ भाव किए हैं, जो कुछ कर्म बांधे हैं, वो अगले भव के लिए साथ में ले। तो जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से समवेत है, समवेत है ना, उसमें स्थित है, साथ है। और दर्शन गुण का वो न बड़ी न चाहिए, दर्शन गुण का प्रतिबंध करने वाला है। प्रतिबंध कहो, आवृत कहो, घात कहो, एक ही अपेक्षा यहाँ है। सब शब्द अलग अलग होंगे, घाती कर्मों की बात चल रही ना, तो कहीं कहीं ऐसा भी कहेंगे दर्शन गुण का घात करने वाला, परंतु घात यानी वो गुण का तो कोई घात नहीं होता है, पर्याय में उसका समूल घात भी नहीं होता है, फिर भी जहाँ कुछ उसका जो पर्यायहीन रूप से परिणमित होती है तो वहाँ कहते उसका आवरण किया, उसका घात किया, उसका विनाश किया, उसका प्रतिबंध किया। ये प्रतिबंध करने वाला है वह दर्शनावरणीय कर्म है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण दो आवरण वाले कर्म हो गए। अब तीसरा यहाँ वेदनीय कर्म है। देखो यहाँ वेदनीय को क्यों लिया, क्योंकि हम घाती अघाती जब कहते भेद करते तो ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय अंतराय लेते हैं और फिर वेदनीय आयु नाम गोत्र ऐसा लेते हैं। अब यहाँ ऑर्डर डिफरेंट है, पहले ज्ञानावरण, फिर दर्शनावरण, फिर वेदनीय, फिर अभी मोहनीय ऐसा कहेंगे। एक तो ये भी बात है कि किसमें कितने परमाणु का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस अपेक्षा से भी होता है, और दूसरी बात है जीव का लक्षण तो ज्ञान दर्शन और फिर सुख दुख अनुभव करता है ना, तो ये सुख दुख रूप अनुभव में ये वेदनीय काम करता है, इसलिए उसको लिया पहले। वो है तो आघाती कर्म, फिर घाती जैसा है ना, उसमें सुख दुख में निमित्तपना हो रहा है उसका, और वो भी मोहनीय के होते हुए हो, वो कंडीशन है उसके। अरे मैंने बोला ना उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कितने परमाणु किसके खाते में है, उसमें इसी ऑर्डर से बताया। थोड़ा कुछ जहाँ ज्यादा, हाँ जो कुछ उसमें, अभी वो तो बहुत डिटेल बात है, उसमें हम नहीं जाने वाले, परंतु वैसी बात बनती है। तो वेदनीय कर्म है, ऊपर लिखा ना वेदनीयम, एक कर्मों के नाम, मूल प्रकृतियों के नाम गिना रहे। वेदनीय कर्म है जो वेदन अर्थात अनुभवन किया जाता है, वह वेदनीय कर्म है। ये सुख और दुख का जो जीव का हर्ष विषाद आदि जो परिणाम होते रहते हैं, वो तो होते तो उसकी मान्यता उसके पीछे है, मोह के कारण ये वेदनीय उसमें भी निमित्त है। जिसके मोह भाव होगा उसके वेदनीय के उदय में वैसा सुख दुख रूप परिणमन होता है, ऐसा लेंगे हम। जिसको मोह नहीं है, ऐसे मुनिराज जो है भी मोह अत्यंत मंद है, उनके चारित्र मोह अल्प है। अब वैसे ही जो कुछ परिस्थितियां बनती है तो उनमें उनके वैसा सुख दुख उसमें कुछ नहीं है, उनके तो सबके प्रति समता भाव है, जीवन में मरण में, या जो कोई उनके प्रहार करे, कोई संकट आवे, या कोई उनकी पूजा करे, तो उसके प्रति उनको कुछ उसमें बहुत हर्ष या विषाद के परिणाम नहीं होते, क्योंकि मोह मंद है। और जो पूर्ण वीतरागी है उनको कितना होगा, तो उनको वेदनीय है कि नहीं, वेदनीय नहीं है, मोहनीय नहीं है। मोह मूल रूप से पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है, साता क्या असाता भी है उनके उदय, उदय की बात चल रही है। हाँ अभी वो मंद हो गए है, वैसा है ऐसा कुछ, तो वो तो कुछ पुद्गल परमाणु है, उसके कुछ लेना देना नहीं, वो उनके सुख दुख उत्पन्न नहीं करा सकता। तो मेन कल्प्रिट वहाँ मोहनीय पड़ा है, तो उसके प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में वेदनीय कर्म, वो तो सुख दुख रूप जीव, उसमें जीव ही उसमें सुख दुख मानता है, तो उसमें निमित्त रूप से सामने कर्म है, कर्म कुछ नहीं कराता उसको। फिर भी हम उसका फल क्या बताते हैं, संयोग लाने में निमित्त है, क्योंकि जीव को संयोग में जो सुख बुद्धि दुख बुद्धि पड़ी है, तो हम उस पर उपचार करते हैं कि वेदनीय के कारण ये संयोग आए, सात आवेदनीय तो बहुत पैसा मिला, ऐसा कहेंगे? तो पैसे का परिणामन वो सात आवेदनीय नहीं कर रहा है, जो कुछ परिस्थितियां है उसको वो निमित्त बनाता है, वो एजेंट बना देता है उसको। अभी हमारे सात आवेदनीय का उदय चल रहा है, तो पंखे को उसने एजेंट बनाया, उसको उसका नौकर्म कहते हैं। ये हर एक जो कर्म है ना, वो कर्म का नौकर्म, कर्म का नौकर्म है ना, उसका जो बाह्य कोई निमित्त है। जैसे ज्ञानावरण कर्म की अभी उदय तीव्र आया, ज्ञान की हीनता यहाँ होने की, और तब सामने कौन एनेस्थेसिया दिया जीव को, तो एनेस्थेसिया हम तो कहते हैं कर्म ने क्या किया, यहाँ तो एनेस्थेसिया दिया, परंतु वहाँ जो ज्ञानावरण का तीव्र उदय आया और वहाँ उसका बाह्य निमित्त एनेस्थेसिया बना, तो हम कहेंगे वो ज्ञानावरणीय का नौकर्म है, उसका वो एजेंट है, ऐसा कहेंगे। अभी यहाँ इसकी बात करनी है, जो वेदन अर्थात अनुभवन किया जाता है वह वेदनीय कर्म है। फिर शंकाकार पूछता है, इस प्रकार की व्युत्पत्ति के द्वारा, व्युत्पत्ति यानी शब्द जैसा तैयार होता है, वेदनीय का अर्थ उन्होंने कैसा किया कि जो वेदन किया जाता है, अनुभवन किया जाता है, वो अगर वेदनीय, ऐसी अगर आप डेफिनेशन यानी परिभाषा बनाएंगे तो सभी कर्मों के वेदनीयपने का प्रसंग प्राप्त होता है। जीव तो सभी कर्मों को वेदता है यानी अनुभवता है, यानी सभी कर्मों का फल भोग रहा है ना, आठों ही कर्मों का फल भोग रहा है, तो आप आठों ही कर्मों को वेदनीय कह दो, क्योंकि जिसका अनुभवन करता है उसको वेदनीय कहा आपने। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि रूढ़ी के वश से कुशल शब्द के समान विवक्षित पुद्गल पुंज में ही, क्या कहते हैं, जैसे कुशल शब्द के बहुत, या भी हम कुशल को छोड़ दो, जो गमन करती है वो गाय, ऐसा जो संस्कृत में उसका गाय शब्द कैसा तैयार, गौ शब्द कैसा तैयार हुआ, जो गमन करती है उसको गौ कहते हैं, वो जीवो वाला गो नहीं, हाँ, संस्कृत में गो किसको कहते हैं, तो जो गमन करते है। तो गमन तो बहुत सारे प्राणी करते हैं, सभी को तो हम गौ नहीं कहते, गाय नहीं कहते, फिर भी रूढ़ी के वश से विशिष्ट प्राणी को हम गाय कहते हैं। वैसे यहाँ सभी पुद्गल स्कंधों में कर्म जो है उसको तो जीव भोगता है, फिर भी रूढ़ी के वश से विशिष्ट कर्म पुष्पल स्कंद को यहाँ वेदनीय कहेंगे, तो उसके लिए उन्होंने कुशल शब्द का दृष्टांत दिया। देखो क्या कहते हैं, कुशल शब्द के समान, अभी वो कुशल का शब्द का अर्थ बाद में करेंगे, कुशल शब्द के समान विवक्षित यानी पर्टिकुलर पुद्गल पुंज में ही वेदनीय इस शब्द की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी वो जो विशिष्ट जिसको हम वेदनीय कह रहे हैं उसी पुद्गल स्कंद को वेदनीय नाम दिया हमने। वैसे तो हम भोगते तो आठों कर्मों का फल भोग रहे हैं, फिर भी उसमें जो पर्टिकुलर कर्म है उसी को वेदनीय कहा। अर्थात जिस प्रकार, अभी वो कुशल शब्द का अर्थ समझा रहे, जिस प्रकार कुशल शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ कुश को लाने वाला होने पर भी उसका रूढ़ार्थ चतुर लिया जाता है। हम कहते हैं ये कार्य कुशल है, यानी कुछ कार्य करने में कुशल है, जैसे रसोई करने में कुशल है, कोई भी जो उसका जो कोई फोटोग्राफी में कुशल है, कोई अन्य किसी उसकी कला में कुशल है, फिर भी वो कुशल का अर्थ कुश को लाने वाला है, इसका उसका अर्थ होता है कुश को लाने वाला, वो कुशल, कुशल ल एने लाने वाला, मंगल एने मंगम लाती, यानी जो सुख को लाने वाला, तो ये कुश को लाने वाला वो कुशल, फिर भी उसका रूढ़ी अर्थ क्या है, चतुर, यानी उसमें वो निष्णात, ऐसा कहते हैं कुशल है। उसी प्रकार सभी कर्मों में वेदनीयता होने पर भी वेदनीय संज्ञा यानी वेदनीय यह नाम एक कर्म विशेष के लिए रूढ़ है, विशिष्ट स्पेसिफिक कर्म के लिए ही हम वेदनीय यह नाम देते हैं। वैसे तो अनुभव या वेदन तो सभी कर्मों का जीव कर रहा है, अथवा जो वेदन कराता है वह वेदनीय कर्म है। अभी दूसरी पद्धति से उसको बता रहे, जीव के सुख और दुख के अनुभवन का कारण ये वेदनीय कर्म है वो क्या है, जीव के सुख दुख के अनुभवन का कारण है। ये सुख है ना, आत्मिक सुख नहीं समझना, अतीन्द्रिय सुख की बात नहीं है, क्योंकि वो तो किसी कर्म के कारण हो ही नहीं सकता है। तो ये जो उसके हर्ष विषाद के परिणाम है, सुख और दुख के अनुभवन का कारण, और क्या है ये कर्म रूप क्यों हुआ है वेदनीय कर्म, तो फिर ये कारण बता रहे, मिथ्यात्व आदि प्रत्ययों के वश से। प्रत्यय किसको कहते हैं? आश्रव को। बहुत अच्छा, आश्रव को प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय कौन कौन से? मिथ्यात्व, अविरति कहो या असंयम कहो, कषाय और योग, या प्रमाद को भी साथ में लो तो भी वो उसी में गर्भित है। ये हुए प्रत्यय, प्रत्यय नहीं ये आश्रव। तो उसके वश से यानी उसके निमित्त से, मिथ्यात्व असंयम कषाय और योग के निमित्त से कर्मरूप पर्याय से परिणत वेदनीय की बात चल रही है। पहला लक्षण बताया जीव को सुख और दुख का अनुभव कराने वाला है। दूसरी बात, ये क्यों कर्मरूप हुए हैं? तो जीव के मिथ्यात्व असंयम कषाय और योग के कारण, उसके वश से यानी उसके निमित्त से ये कर्मरूप हो गए हैं। और कैसे है? जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध को प्राप्त, यानी जो जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध को प्राप्त हुए और वैसे ही रहेंगे कुछ काल के लिए, ऐसे पुद्गल स्कंद हैं, वे वेदनीय इस नाम से कहा जाता है। उन पुद्गल स्कंदों को हम वेदनीय कर्म कहते हैं। सभी कर्मों में यही बात कहेंगे, मिथ्यात्व आदि उसके कारण वो कर्म रूप हो गए हैं और जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से रहते, फिर भी उसके जो फलदान की अलग अलग शक्ति है उसके कारण उसको अलग अलग नाम देंगे। तो यहाँ तो जीव को सुख दुख का अनुभव कराने वाला वो वेदनीय है। पहले हमने देखा कि दर्शन को आवृत करने वाला वो दर्शनावरण है, ज्ञान को आवृत करने वाला ज्ञानावरण है। बाकी ये जो बाकी है ना, मिथ्यात्वादी के कारण बनते हैं और जीव के एक क्षेत्रावगाह में रहते हैं, वो सब में वो कॉमन होगा, सब कर्मों के बारे में वो लिखेंगे। अब शंका, उस वेदनीय कर्म का अस्तित्व कैसे जाना जाता है? वेदनीय की तो बात छोड़ो, लोग कहते हैं ये कर्म विर्म कुछ नहीं, आपने हवा बनाया, हवा ने जैसे बच्चों को डराते ना, ये भूत आएगा उधर अंधेरा रूम है तो, हाँ तो कहते हैं कि ये वेदनीय कर्म विर्म कुछ नहीं। लोग तो कहते कर्म विर्म कुछ है ही नहीं है, लोग अच्छा बर्ताव करे इसलिए आपने ये कुछ खड़ा कर दिया काल्पनिक। तो कहते यहाँ वेदनीय कर्म है ही नहीं है, तो उसके अस्तित्व जाना कैसे आपने? उसका समाधान, सुख और दुख रूप कार्य अन्यथा हो नहीं सकते, क्योंकि ये सुखी दुखी जीव देखने में आ रहा है, किसी को सुख हो रहा है किसी को दुख हो रहा है ना, तो ये अन्यथा उसका कार्य बन नहीं सकता। यदि कर्म नहीं होता, उसका अस्तित्व, उसका उदय नहीं होता, उसका ये फल मिल रहा है, जीव भोग रहा है ना उसका फल, तो जिसका फल वो अनुभव कर रहा है वहां तो वो चीज भी होनी चाहिए। इस अन्यथा अनुपपत्ति से, अन्यथा अनुपपत्ति ने नॉट अदरवाइज पॉसिबल, यदि वेदनीय नहीं होता तो यहाँ जीव को ये जो सुख दुख के परिणाम भी नहीं होते। परंतु ये सुख दुख के परिणाम तो ये हम बार बार दिन में 24 घंटे वही चलता रहता है। किसी चीज में सुख मानते हो किसी और किसी में दुखी होते रहते हैं, और वो भी अपने नहीं, परद्रव्यों के नहीं, शरीर आदि की पर्याय देखकर, धनादि की पर्याय देखकर, औरों की पर्याय देख देख कर यहाँ हम दुखी होते हैं, क्योंकि हम अपने को शरीर रूप से अनुभव करते हैं। तो कोई शरीर से विदा लेकर चला गया अन्य भव में अपने अपने कर्मों को लेकर, तो हम भी अरे मैं भी ऐसा ही, अपने को शरीर रूप माना है तो वहाँ वो मानता है शरीर तो अभी पड़ा रहा, जल गया, जला दिया उसको, तो उस जीव का पूरा नाश हो गया। तो यहाँ अपने को भी दुख चालू हो जाता है हम भी ऐसे मानते हैं ना, अरे उसका नाश हो गया अभी हमारा क्या होगा। तो क्या कहते हैं, ये सुख दुख कार्य अन्यथा नहीं हो सकते। यह जो अन्यथा अनुपपत्ति है उसके कारण वेदनीय कर्म का अस्तित्व जाना जाता है, और कारण से निरपेक्ष कार्य उत्पन्न होता नहीं है। यानी जहां जहां कार्य पाया जाता है, यहाँ कार्य क्या हो रहा है, सुख दुख का अनुभव, तो वहां उसका कारण भी होना चाहिए। यहाँ कारण यानी अभी निमित्त को हम, निमित्त की अपेक्षा यहाँ कारण कह रहे हैं, तो वहाँ उसका निमित्त रूप वेदनीय कर्म भी होना ही चाहिए, क्योंकि अन्यत्र उस प्रकार देखा नहीं जाता कि जहाँ ऐसा नहीं है उनके सुख दुख भी नहीं है। ये जो भगवान है, सिद्ध भगवान है, उनको कोई भी कर्म नहीं है, तो वहाँ उनके ये जो लौकिक सुख दुख की बात है वहाँ तो होते ही नहीं उनके। वो तो अतीन्द्रिय आनंद में है उनके, उनको तो अतीन्द्रिय सच्चा सुख है। ये जो यहाँ सुख दुख की बात है वो तो लौकिक सुख दुख की बात है, हमारी जो डेली में है उसकी बात चल रही है। अब ये दो लाइन हम पढ़ेंगे। जीव दुख स्वभावी नहीं है, क्योंकि क्या है, दुख स्वभावी है ही नहीं, वो सुख स्वभावी है, सुख से परिपूर्ण है, क्योंकि जीव के लक्षण स्वरूप ज्ञान और दर्शन के विरोधी दुख का जीव का स्वभाव होने में विरोध आता है। दुख है वो ज्ञान दर्शन का विरोधी है, और वो विरोधी होने के कारण जीव का लक्षण नहीं हो सकता। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकन हो सदा देतो।